الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان آدھا گزر چکا ہے اب باقی کے جو دن رہ گئے ہیں ان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کتنی تیزی سے دوڑنا ہے پچھلے 15 دن کا محاسبہ کیجئے کہ کیسے گزرے ہیں ان میں کیا کمی رہ گئی کون سی چیزیں ہیں جن میں مجھے اپنی رفتار کو تیز کرنا ہے کیا کچھ ہے جو میں نہیں ابھی تک کر سکی اور وہ مجھے شامل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ بکری کا گوشت صدقہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا اس میں کچھ بچ گیا تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے فرمایا سارا ہی مسکینوں میں تقسیم کر دیا ہے سوائے اس کے یہ اتنا سا بچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو نہیں بچا باقی تو سارا بچ گیا اسی طرح ہماری زندگی یا ہماری یہ پچھلے 15 دن ان میں وہ بچ گئے جس میں ہم نے عبادت کی ہے جس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کی ہیں جن کو جس وقت کو ہم نے کہیں لگا دیا وہ تو بچ گیا باقی سب ضائع ہو گیا تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کتنا بچا دیا بچت اپنی سیونگ کو دیکھتے ہیں نا سب دیکھتے ہیں کتنا جمع کر لیا ہے میرے پاس کتنا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں یا جہاں بھی رکھا ہوتا ہے تو اپنے ان 15 دنوں کو بھی دیکھیں کتنا کچھ ہے ان میں کتنی بچت ہو گئی اور کتنا گنوا دیا کل ہم نے ایک دعا کی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس دعا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی یہ دعا اس قدر اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کا دل تو پہلے سے جمع ہوا تھا دین پہ لیکن ہمیں سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے مانگنا آپ کا ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل رکھیں کیوں اس لیے کہ ایک چیز ایسی ہے جس کی طرف سے آپ کبھی بے فکر نہیں ہو سکتے اپنی ساری زندگی میں نہیں ہو سکتی اور وہ ہے ایمان وہ ہے دین کیونکہ اس دین کے نا دشمن بہت ہیں کہیں شیطان ہے کہیں ہمارا اپنا نفس ہے کہیں ماحول ہے کہیں کوئی لوگ ہیں طرح طرح کے فتنے ہیں ہمارے ارد گرد اور اب تو دنیا میں ان فتنوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسے جیسے قرب قیامت ہے دین کے ایمان کے لٹیرے بڑھتے جا رہے ہیں تو آخری سانس تک کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا کوئی نہیں یہ کہہ سکتا میں اب سیف ہوں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں سکھا گئے قرآن پاک میں بھی دعا آتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی کیونکہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی دل الٹتا پلٹتا رہتا آپ یہ دیکھ لینا ہم ایک حالت میں تو رہتے نہیں رمضان شروع کیا ایک ہی ایمان کی حالت میں ہوں گے بیچ میں آئے تو دوسری حالت میں اینڈ کرتے ہیں تو کسی حالت میں رمضان کے بعد کوئی اور ہی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کون سا ایک حالت پہ ٹھہرتا ہے پچھلے رمضان میں کوئی اور کیفیت ہوگی آپ کی اس رمضان میں کوئی اور ہے اگلے میں پتہ نہیں کیا ہوگی تو ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میرا دل پلٹنا چاہے چاہے آپ کتنی ہی زیادہ عبادت گزار ہیں چاہے آپ کتنے ہی زیادہ نیک ہیں کیونکہ یہ ہم نہیں جانتے کہ کس کا خاتمہ کس پہ ہونا ہے اسی لیے کسی زندہ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے اس کے جیسا بنا دے یا فلاں تو بس بیسٹ ہے اس جیسا کوئی ہے نہیں اس لیے کہ ہم نہیں جانتے جب تک اس کا خاتمہ نہ ہو جائے کہ ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا इसका खात्मा ईमान पे हो गया ना, बड़ा ही खुशकिस्मत है। जिसको कलमा नसीब हो गया ना मरते वक्त, बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि जो हम जिंदा बैठे हैं हमें तो अभी पता ही नहीं हमारी उस वक्त क्या हालत होनी है जिस वक्त हमने दुनिया से जाना। हमें उस वक्त क्या कलमा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे ईमान का क्या हाल होगा, हम नहीं जानते। शैतान के हमले उस वक्त बेतहाशा होते हैं, क्योंकि इंसान इस सरहद को उबूर करके दूसरी दुनिया में जा रहा होता है, और शैतान नहीं चाहता कि इसका खात्मा ईमान पे, क्योंकि आमाल जो है वो डिपेंड करते हैं अपने खात्मे पे। आप देखे ना अंग्रेजी का भी एक मुहावरा है कि जो भी एंड जो जिसका एंड सही हो, जिसका खात्मा सही हो, वो चीज सही है। वो अब ये भी दुनिया के जो मुहावरे बने हुए हैं वो इसीलिए बने हुए हैं कि जब आप आखिर में अगर कामयाबी मिल गई तो बस ठीक है, फिर चाहे पीछे कितना भी कुछ भी होता रहा है इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर कोई बहुत ही कामयाब चल रहा है, एंड में आके वो कहीं फिसल जाता है, नाकामी हो जाती है, तो वो फेलियर कहलाता है। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। तो इसी तरह आमाल में भी अपने खवातीन पे वो डिपेंड करते हैं। अब खात्मा किस पे हुआ, जिंदगी भी खात्मे पे डिपेंड करती है कि खात्मा किस पे है। चाहे कोई जिंदगी में कुछ भी करता रहा हो, एक यहूदी लड़का था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत किया करता था, तो एक दफा आपको यानी नौकर था आपका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो बीमार हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी इयादत के लिए गए, वहां पहुंचे तो देखा वो तो मौत के करीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी। लड़के ने अपने बाप की तरफ देखा जो उसके सर के करीब खड़ा था, तो बाप ने कहा अबू कासिम की बात मान लो। देखिए सुभान अल्लाह, उनको पता था कि ये सच्ची है, तो लिहाजा लड़का इस्लाम ले आया, उसने कलमा पढ़ लिया और फिर वो फौत हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह जिसने इस लड़के को मेरे जरिए आग से निजात दी। तो यानी पूरी जिंदगी वो यहूदी रहा और अब बिल्कुल आखिर में आके वो कलमा पढ़ लेता है। तो वो जो एंड उसका हुआ है ना, उसने उसके पिछले सारे को इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, मिटा दिया। इसके बरक्स देखें हम एक मिसाल देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आया करता था, तो वो कहता है कि मैं बड़ा ही गरीब हूँ, बड़ा तंगदस्त हूँ और कई साल से ये गुर्बत चल रही है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए वो मुझे माल दे दे। और ये शख्स मस्जिद आया करता था 5 दफा दिन, रमजान में इतकाफ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, आपने भांप लिया, फरमाया मुझे डर है अगर मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए माल मांग लूंगा तो इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी नहीं है, तुम्हारी जो अल्लाह ताला से कुर्बत है, जो नेक अमाल तुम कर रहे हो उससे दूर हो जाओगे, इस नेमत से महरूम हो जाओगे। यानी ये जो अल्लाह ताला का कुर्ब है ये तो एक नेमत है ना, हम नेकियों की तौफीक मिल जाना एक नेमत है। तो उसने कहा नहीं नहीं इसरार किया कि नहीं नहीं आप जरूर मेरे लिए दुआ करें। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमा दी, अल्लाह ताला ने उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए। उसके रिस्क में इतना इजाफा हुआ, उसकी बकरियां उसकी भेड़ें इतनी ज्यादा हो गई कि उसको अब जरूरत पड़ी कि इनको चराने के लिए बाहर लेके जाए, मदीना से बाहर ले जाने लगा। अब जब बाहर ले जाने लगा तो उसको मस्जिद में आना जाना कम हो गया, पहले 5 दफा आया करता था अब दिन में सिर्फ 1 दफा आने लगा, इसके बाद और इजाफा हो गया तो और दूर निकल के जाके चराना पड़ता था। गायरत जितनी ज्यादा होंगी फिर और ज्यादा इसके लिए काम भी बढ़ गया, जिसकी वजह से अब दिन में 1 दफा आना भी मुश्किल हो गया, सिर्फ जुमे के जुमे आने लगा, उसके बाद जुमा भी खत्म हो गया सिर्फ ईद पे आने लगा, और फिर तो ईद पे आना भी उसके लिए मुश्किल हो गया, उसने घर में ही नमाज पढ़नी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया उसने तो कब से मस्जिद आना छोड़ दिया, उसका काम कारोबार उसके माल ने उसको इतना मसरूफ कर दिया कि उसके पास अब वक्त ही नहीं है कि मस्जिद आए। इसके बाद ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा आदमी भेजा, ज़कात उस वक्त कलेक्ट की जाती थी जाके लोगों के पास से, उसने ये कह के वापस कर दिया कि ये ज़कात हम पे कोई टैक्स है, मैं तो नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो फरमाया अब इससे मैं ज़कात नहीं लूँगा। लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फिर आया तो आपने उससे ज़कात नहीं ली। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आया तो उन्होंने भी फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ली तो मैं भी नहीं लूँगा। और इसी तरह वो शख्स मर गया। आपने देखा बाज़ दफ़ा कोई चीज़ें हम समझते हैं ना कि ये हमारे लिए बड़ी अच्छी हैं और ये ऐसे ही हो जाना चाहिए और हम दुआएं भी करते हैं और बड़ी हिर्स भी करते हैं, हमें नहीं पता कि वो हमें ईमान के किस लेवल से किस पे ले जाए, हम नहीं जानते। हो सकता है हमारे लिए तंगदस्ती बेहतर हो सकता है हमारे लिए कोई ऐसी हमारे साथ कोई परेशानी लगे वो ही बेहतर हो सकता है हमारे लिए कोई बीमारी बेहतर हो, हम नहीं जानते। क्या पता अल्लाह सेहत दे दे तो अय्याशी में पड़ जाए, क्या पता अल्लाह माल दे दे तो और बिगाड़ में पड़ जाए, क्या पता है कि अल्लाह ताला कोई एक परेशानी दूर कर दे तो हम आपे से बाहर होके मुतकब्बिर ही हो जाए, तो हम नहीं जानते। इसलिए कि ईमान की एक स्टेट रहती नहीं है, ये घटता बढ़ता रहता है। जरूरी नहीं है आज जिस पे हैं, देखे कहां वो 5 वक्त का नमाजी था, तो कितना बड़ा इससे लेसन मिलता है कि ईमान के बारे में हमेशा इंसान इस चीज की फिक्र करे कि मेरा ईमान ना घटे। हम नहीं जानते ईमान की कल को क्या लेवल होना, इसको बचाने की ऐसी कोशिश होनी चाहिए और इसकी ऐसे हिफाजत होनी चाहिए जैसे इंसान अपने किसी बड़े खजाने की सब हिफाजत करता है, उससे भी बढ़ के। खजाना तो चला जाए तो कोई नहीं, नुकसान नहीं है ना माल का, लेकिन ईमान चला गया तो हमेशा की जिंदगी का नुकसान हो गया। आपको फुज़ैल बिन अय्याज़ का बताया था कि कितने बड़े डाकू थे, कितने बदनामे जमाना थे, और फिर कैसे एक आयत सुनी है अलम यानी लदीना अमनु तक्षा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि तू अभी वो वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए उनके दिल डर जाए अल्लाह के जिक्र से, बस ये सुनना था दिल काम किया कि आए हैं डाका डालने के लिए और कोई क़याम में खड़ा हुआ ये तिलावत कर रहा, और ये सुनी है तो उसी वक्त फरमाते हैं कि हाँ बला या रब्बी कद आन, बेशक मेरा रब वो वक्त आ गया, दिल ही बदल गया। और निकलते हैं वहां से तो सोचते हैं मैं कैसी जिंदगी गुजार, चलते चलते एक जगह पहुंचे जहां एक काफिला पड़ाव डाले हुए था, ये मुसाफिर थे, उनसे इजाजत लेके उनके पास बैठ गए और देखा कि वो बहस कर रहे हैं इस बात पे कि यहाँ रात गुजारी जाए या आगे चला जाए, इसलिए कि आगे तो फुज़ैल डाकू है उसका इलाका है, अगर हमने सफर जारी रखा तो फुज़ैल कहीं ये ना हो कि हमें हम पे हमला करके और हमारे माल लूट ले। इतने परेशान हुए सुन के कि मैं ऐसा हूं जिससे लोग खौफज़दा हैं, इतने लोगों की जिंदगी मैंने जीरन बनाई, इतने लोगों को परेशान किया व तंग किया कि लोग मेरे से पनाह मांगते, तो तब उन्होंने फैसला किया कि बस ये जिंदगी बदलनी। और देखें आज उनका नाम किस में आता है, इतने मशहूर आलमे दीन, मशहूर इबादत गुजार, तारीख उनको याद करती है। तो एक आयत ने उनकी जिंदगी बदल, एक आयत ने अंधेरों से नूर में उनको लाकर खड़ा कर दिया। एक हादसा जिंदगी में होता है, एक कोई बात होती है, हमें नहीं पता कि कौन अंधेरों में हो और वो रोशनी में आ जाए, और हमें नहीं पता कि कौन रोशनी में और वो अंधेरों में चला जाए। और इंसान ईमान के ऊपर के दर्जों में हो और गिर के लुढ़कता हुआ नीचे आ जाए। हम नहीं जानते कि ईमान का क्या कल हाल होने वाला है। हाँ हम कोशिशें कर सकते हैं, हम इसके लिए दुआएं कर सकते हैं, मगर हम कह नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि शैतान तो फुल टाइम इस मेहनत में लगा हुआ है कि खींच ले इंसान को किसी तरह। और ये उसने अहद किया था पहले दिन से, उसकी जिंदगी का मकसद ही यही है, उसने जिंदगी मांगी इसलिए थी कि मुझे मोहलत दे अल्लाह कयामत तक, इसलिए जो ऐसे नहीं कि मुझे बस जिंदगी चाहिए, बस इसलिए कि मैं इनको भटकाऊं। तो इस जिंदगी में इस फिक्र के साथ जीना है, जब तक हमारी जिंदगी की घंटी ना बज जाए हम आखिरत से अपने ईमान से बेफिक्र नहीं हो सकते, आखिरी सांस तक नहीं बेफिक्र हो सकते। आप जानते होंगे, कभी आप सर्च भी करके देख सकते हैं अब्दुल्ला कसीमी के बारे में, बड़ा मशहूर मुसन्निफ था, सऊदी था, तो 20th सेंचुरी का इतना बड़ा डिफेंडर था, डिफेंड करता था सलफी मजहब को। तो उसने इतनी किताबें लिखी और इतनी जबरदस्त किताबें लिखी कि उलमा कहते थे उस वक्त में भी कि इसने जन्नत की कीमत अदा कर दी। जबरदस्त, इसने किस तरह डिफेंड किया दीन इस्लाम को और इसको, और उसके बाद उसका क्या बेड़ा गर्क हुआ कि वो एथीज़म की तरफ चला गया, एथीज़म को डिफेंड करने लगा और इस्लाम को उसने रिजेक्ट कर दिया। उसको गॉड फादर ऑफ अरब एथीज़म कहते हैं, यानी एक तरह स्टार्ट करने वाला बड़ा उनका। अस्तग़फ़िरुल्लाह, फिर उसकी किताबें बैन कर दी गई। तो इस तरह से कोई लोग पलट जाते हैं, इस तरह से दिल की हालत एक से दूसरे की तरफ चली जाती है। तो अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहें, इस दिल को अल्लाह ताला के हवाले करें कि अल्लाह तेरी दो उंगलियों के दरमियान है मेरा दिल, अपनी इताअत के ऊपर इसको रखना, अपने दीन पे जमा के रखना। तो सहाबा तो इतना डरा करते थे, सारी ज़िंदगी इस बात से बेचैन रहते थे, ये दिल फिरते उड़ते फिरते रहते हैं तो इसका हमारे दिलों का क्या हाल हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और इंसान बाज़ दफ़ा हदीस में आता है ना कि जहन्नमियों वाले काम करता रहता है और आखिर में आके कोई ऐसा काम दे कर लेता है कि वो जन्नती हो जाता है, और बाज़ दफ़ा जन्नत वालों के अमल करता रहता है सारी ज़िंदगी लेकिन आखिर में आके ऐसा कोई काम कर देता है कि वो जहन्नमी हो जाता है। तो सुफियान सॉरी की जब मौत का वक्त करीब आया तो रोने लगे। एक आदमी ने कहा, ए अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है आपके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं तो आप इतना रो रहे हैं। आपने ज़मीन की कुछ मट्टी उठाई, कहने लगे, खुदा की कसम मुझे अपने गुनाहों की इतनी फिक्र नहीं है जितनी इस बात की फिक्र है कि मौत से पहले कहीं मेरा ईमान ना छिन जाए। तो आम लोगों को सिर्फ गुनाहों में पड़ने का डर होता है, मगर जो बड़े लोग हैं उनको इस चीज़ की फिक्र होती है कि कहीं हमारा ईमान ना चला जाए। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि किसी ने अल्लाह ताला की बारगाह में भूखा और नंगा होने की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई उस वक्त के नबी की तरफ कि इसको कह दो कि ऐ मेरे बंदे, क्या तू इस पे राज़ी नहीं है कि मैंने तेरे दिल को कुफर से महफूज रखा, कि तू मुझसे दुनिया के सवाल करता है। तो उन्होंने मट्टी उठा के अपने सर में डाली और कहा, क्यों नहीं, मैं राज़ी हूँ कि अल्लाह तूने मुझे कुफर से महफूज रखा। तो हमें तो इतना ज़्यादा अल्लाह ताला का इस बात पे शुक्र गुजार होना चाहिए, तो उसने हमें इस्लाम पे पैदा किया, इस्लाम हमें अता फरमा दिया बिन मांगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी, कोई ऐसी, अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी ऐसी गम या हादसे से दो चार नहीं होना पड़ा कि जिससे ज़िंदगी पलटती। अल्लाह ताला ने हमें बैठे बिठाए वो नेमत अता फरमा दी जो सब नेमतों से ज़्यादा बड़ी नेमत, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाना, क्योंकि एक है इस्लाम और एक है ईमान। ईमान के पौधे को सींचना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो इस्लाम तो मिल गया, आगे ईमान को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि इंसान नेकों की सोबत इख्तियार करे, ऐसी मजलिसें इख्तियार करे जहाँ से उसका ईमान बढ़ता है, कुरान पाक से अपना ताल्लुक जोड़ ले ऐसे कि कुरान उसकी ज़िंदगी में हो, उससे दूर ना जाए। कुरान की भी सोहबत है ना, ये भी एक बेहतरीन साथी है। मैं कहती हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में कुरान है ना, वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि ये आपको यहाँ पे भी कंपनी देता है, कब्र में भी कंपनी देगा, और हशर के दिन भी जहाँ पे कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, ये वहाँ पे भी खड़ा होगा इंसान के साथ। तो इतने प्यारे साथी को यहाँ साथी बनाएंगे तो ये साथ देगा वहां, अगर यहाँ इसका साथ छोड़ दिया तो फिर ना उम्मीद रखें कि वहां भी ये साथी बनेगा। तो इसको सीखना, इसको समझना, इसको पढ़ना, इसके साथ वक्त लगाना, इसको अपनी खुशकिस्मती समझिए कि अल्लाह ताला बात कर रहा है मुझसे और आपसे। कहाँ वो कायनात का रब और कहाँ हम जर्रे से भी कम हैसियत की, क्या चीज है हमारी हैसियत और हमारी जात क्या है। वो रब्बे कायनात कलाम कर रहा है हमसे इस कुरान में, ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो इसलिए हमारा एहसान नहीं है कि हम कुरान इतना पढ़ते हैं, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें इस काबिल किया, इतनी तौफीक दी कि हम इसको पढ़ पा रहे हैं या हम इसको सीख पा रहे हैं। और रमजान में तो सब और चीजें छोड़ दें, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान बस, क्योंकि तो ये है ही महीना कुरान का। आज आपको जो नमाज को सजाने का एक और मैं तरीका बताना चाहती हूँ। पिछले दो तरीके आपने किए, सजदों के अंदर दुआएं करना और पहले तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ के खड़े होना। इसी तरह आज एक और जरिया नमाज को सजाने का, वो ये है कि दोनों सजदों के दरमियान दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिलती है अबू दाऊद में, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी मुझे माफ कर दे, मुझे मुझ पे रहम फरमा दे, व आफीनी अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा, व हदीनी अल्लाह मुझे हिदायत दे, व रजुकनी अल्लाह मुझे रिज्क अता फरमा। ये कितनी सारी प्यारी बातें इसमें मांग ली गई। इसी तरह अगर ये नहीं आती दुआ, बस तो इसको याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं आती तो इतना तो सब भी कर सकते हैं, रब्बे गफिर ली, रब्बे गफिर ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ा करते थे। और आपका सज्दों के दरमियान बैठना कितना होता था, ये वही जो बैठेगा तो वो पढ़ सकेगा ना, जिसने एक सज्दे से उठाए तो दूसरे पे गिर गया वो कैसे पढ़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बैठते थे, उतनी देर बैठते थे जितनी देर सज्दे में होते थे। बाज दफा इतनी देर बैठते थे कि लोग समझते थे पता नहीं सजदा करना ही भूल गए क्या। तो इसमें इत्मीनान से बैठना, इस वक्त सजदे के बराबर आपने बैठना। तो इसमें इन दुआओं को लाजिम पकड़ें, ये बहुत प्यारी दुआएं, और सजदे में तो आपने मांगनी ही है, सजदे में तो दुआएं कबूल होती हैं। तो जितनी मसनून दुआएं आराम से मांगिए, जो कुरानी दुआएं मैंने आपको बताया था रब्बाना से ज्यादातर शुरू होती हैं, तो उनसे पहले अल्लाहुम्मा भी लगा लें, तो वो फिर क्योंकि कुरान आप सद्दे में नहीं पढ़ सकते तो एहतियाती तौर पे अल्लाहुम्मा रब्बाना कह के पढ़ लें। इसी तरह एक और सुन्नत आप कर सकते हैं, ये मौकेदा नहीं है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी किए, लेकिन इसकी भी बड़ी फजीलत है। और आजकल अगर करेंगे तो हम, देखिए बाज़ चीज़ें हम आम दिनों में नहीं करते, लेकिन आजकल उनका खास तौर पे एहतमाम कर सकते हैं, रमज़ान है ना, तो खास तौर पे वो लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नमाजें छोड़ दी थी, नहीं पढ़ते थे, अब उनको रिग्रेट होता है, अब क्या करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इन सुन्नतों का अहतमाम करें। कि क्या है, जोहर की जो सुन्नत है, हम वैसे तो पढ़ते हैं 4 रकत सुन्नत हम पढ़ते हैं, उनको भी दो दो करके पढ़ना है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो करके पढ़ी है, दो पढ़ के फिर सलाम फिर या फिर दो पढ़े, तो जोहर के फर्जों से पहले 4 आपने सुन्नतें पढ़ ली, और जोहर के फर्जों के बाद भी अगर 4 ही पढ़ लेते हैं आप, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स पे जो जोहर से पहले और बाद 4 4 रकात सुन्नत अदा कर ले तो उस पर जहन्नम की आग हराम है, या अबू दाऊद की रिवायत है, ठीक है। देखिए छोटे छोटे काम हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर अजर बहुत बड़े हैं, लिहाजा इनको अगर हम एहतमाम कर लें तो बहुत अच्छा है। आज का जो जिक्र है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे ना, यानी जैसे हम दुआए इस्तफ्ताह करते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, वो भी पढ़ते थे, लेकिन उसकी जगह ये भी पढ़ते थे। उसकी जगह दोनों नहीं, एक या तो ये पढ़ लें या वो पढ़। तो इस जिक्र को आप वैसे भी कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जो ये पढ़ता है। ये इतना उम्दा जिक्र है, और आसमान के दरवाजे खुल जाने का मतलब है कि बरकतें, रहमतें, रिज़्क़ सब कुछ आसमान से ही उतरता है। तो अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह ताला अकबर है, बहुत अकबर, बहुत बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ही कथीरा, उस सारी तारीफ उसके लिए और बहुत ज्यादा तारीफ। व सुभान अल्लाह ही बुकरा तो असीला, और वो पाक है और मैं उसकी पाकी बयान करता हूँ सुबह शाम। ठीक है, ये आज का जिक्र है आपका। फिर आज की जो दुआ है बहुत अहम दुआ है, सूरह तहरीम में ये दुआ आती है। दुआ क्या है? रब्बना, ए हमारे रब, अच्छमिम लना नूरना, हमारे नूर को मुकम्मल कर देना। वाग़फिर लना, और हमें बख्श देना। इन्नके आला कुल्ली शेइन कदीर, तू हर चीज पर कुदरत रखता है। तो ये नूर क्या है, कब मुकम्मल होने की बात हो रही है? लेकिन कयामत का दिन अंधेरों का दिन है। उस दिन जिसको नूर मिलेगा वो ही पुल सिरात भी पार कर सकेगा। तो उस दिन लोगों के नूर कभी जलेंगे कभी बुझेंगे। कईयों को तो नूर ही नहीं मिलेगा, जिनको मिल जाएगा उनके अमल के मुताबिक होगा कितना मिलेगा। किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी का जलता बुझता होगा। तो अल्लाह उस दिन हमारे नूर को मुकम्मल कर देना। ये उस दिन लोग इतने हवास बाख्ता होंगे, ये उस दिन उनकी दुआ भी होगी। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे नूर को मुकम्मल फरमा देना और हमें बख्श देना, क्योंकि वो बहुत ही आसान खता कर देने वाला वक्त होगा, इंसान के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। पुल सिरात का भी कहा गया कि उस वक्त भी किसी को किसी की नहीं याद आएगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। उस वक्त इंसान अपने अपनी उसको पड़ी होगी, क्योंकि पुल सिरात को पार करना आसान काम नहीं होगा। अल्लाह उस दिन हमारे नूर को मुकम्मल फरमा देना। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।